اخوت اسلامی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں جو چیز قرآن کے جو ہے زیر سایہ جو کہی گئی ہے کہ قرآن میں جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے اور وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم آپ سے بس چاہیں گے کہ اس کا آپ تعارف کر دیں کہ اخوت اسلامی قرآن کے سائے میں قرآن کی نظر میں کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سحر ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. انتہائی اہم موضوع ہے. جب ہم قرآن میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ریشہ جو ہے وہ اخ سے لیا گیا ہے. اخ کے معنی عربی میں بائی کے ہیں. جب ہم اسے اخوت میں دیکھتے ہیں تو یہ بائی چارے کے معنی میں آ جاتا ہے, جس کے لیے خدا بند مطال سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اور خدا بند مطال کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ, تو اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی, محبت پیدا کر دی, اور تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے. اس آیت کا پس منظر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اوس و خزرج, انصار اور مہاجرین جو کہ ایک دوسرے کے قتل پہ تھے, قتل کے در پہ تھے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کے درمیان سالوں سالوں لڑائیاں چلتی تھیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تاریخ اسلام جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک کبوتر لڑائی کے دوران ایک خیمے کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس خیمے کے کبوتر کو اڑانے کی وجہ سے قبائل کے درمیان تقریباً 10 سال تک جو ہے یہ جنگ جاری رہی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا بند مطال نے ایک نعمت کے طور پر انصار و مہاجرین کے درمیان بھیجا اس دور میں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ مواقع جو ہے وہ باندھ دیا. اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بہت ساری زندگی میں دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو پیش کیا, مہربانی کو پیش کیا, اخلاق اور لہجے کی نرمی کو پیش کیا, جس میں قرآن مجید کی آیتیں بھی مختلف جگہ پر ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لہجے میں نرمی رکھی تاکہ یہ لوگ تمہارے قریب آ کر بیٹھیں اور تم سے نصیحت حاصل کریں. اگر ہم بھی تمہارے لہجے کو کرت اور سخت بناتے تو یہ لوگ تم سے فرار اختیار کرتے. تو اس طرح سے خدا بند مطال نے لوگوں کے درمیان جو ہے اس اخوت کو رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو وہ انصار جو کہ ایک دوسرے کے خون کے در پہ تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور تاریخ بشریت میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح کی مواقعات مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی, کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. حتیٰ کہ تاریخ اسلام نے اس کی واضح مثال اس طرح سے پیش کی کہ اگر کسی کے پاس دو بیویاں تھیں تو ایک جو انصار ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کے لیے ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے اس سے شادی کر لیں. یعنی اس سے بڑی ہمیں جو ہے وہ فراخ دلی کی مثال تاریخ اسلام میں کہیں بھی نہیں ملتی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث نبوی میں بھی اخوت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اگر ہم آج کے عصر حاضر میں دیکھیں تو اخوت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اختلافات جو ہیں وہ دوریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ان اختلافات کو آپس میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے نپٹائیں تاکہ ہمارے درمیان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو سکیں.
آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کی کیا اہمیت تھی, کہ اتنی اہمیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا خدا بند عالم نے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں حقوقوں کے بارے میں بتایا, حقوق کے بارے میں بتایا گیا, لیکن آج کل کی دنیا میں وہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں جب انسان کے درمیان سے وہ محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے جس پہ قرآن کریم نے بھی تاکید فرمائی ہے, اور بارہا قرآن مجید میں جو ہے امت واحدہ کا لفظ آیا ہے, اور کسی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے المومن اخو المومن, مومن مومن کا بھائی ہے, اور کسی جگہ پر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آج سب سے پہلے ہمیں ایک اتحاد کی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں اتحاد سب سے انفرادی किरदार अदा करता है। अगर हम दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबों को उठा कर देखें तो उसमें भी हमें सबसे अहम उनसर और अहम जुज़ जो है वो इनकलाब का इतिहाद दिखाई देता है,
जी
क्योंकि जब तक लोगों के दरमियान इतिहाद कायम नहीं
जी
होगा उस वक़्त तक कोई भी मिल्लत कोई भी कौम जो है वो इनकलाब जो है उस जगह पर कामयाब नहीं हो
जी
सकता। क्योंकि हमने बहुत सारे इनकलाबात ये पिछले कुछ सालों में देखें जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से इनकलाबात तो लाने की कोशिश की मगर बाद में लोग जो है इख्तलाफात का शिकार हो गए, उनके दरमियान इतिहाद और अख़ुव्वत का वो रिश्ता बाकी नहीं रहा
जी
जिसकी वजह से वो इनकलाब को ला रहे थे। यानी इनकलाब लाने की हद तक तो उन्होंने इतिहाद और अख़ुव्वत का
क्या
मुजाहिरा किया मगर इतिहाद को बचाने के लिए जिस अख़ुव्वत की ज़रूरत थी जिस भाईचारे की ज़रूरत थी उस चीज़ को इन लोगों ने फरामोश कर दिया। इसी तरह से हम देखते हैं आपस में बहन भाई या एक खानवादा जो एक घराना है उसके अंदर भी इतिहाद की बहुत ज़रूरत है।
जी
इसी तरह एक माशरे के अंदर एक मोहल्ले के अंदर आपस में लोगों के रहन सहन के तरीक़ों के अंदर यानी जब तक देखें इख्तलाफ़ी राय तो हो सकता है आपको
जी
किसी के साथ मगर इख्तलाफ़ी राय अपनी जगह पर कायम रहना चाहिए
जी
मगर आप उसकी जुज़ियात को लेके जिनमें इतिहाद हो सकता है जिनमें आपका रिश्ता जो है वो अख़ुव्वत के साथ मुंसलिक हो जाता है
जी
उन बातों को लेकर आपको आगे चलना चाहिए ताकि आप मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द करार पा सकें। हमने देखा कि जब भी किसी मुआशरे के अंदर हकूक़ की पामाली हुई
जी
हकूक़ की पामाली में सबसे अहम किरदार जिस चीज़ ने अदा किया वो आपस की नफ़रतें हैं। जब तक हम इन आपस की नफ़रतों को अपने आपस की कदूरतों को और दिल के अंदर जितनी भी स्याहियां या लोगों के मुतालिक जितनी भी बातें हैं
उन्हें दूर
उनको
नहीं करें,
अपने दिल से दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जो है वो इतिहाद कायम नहीं
नहीं
हो
हो
सकता।
सकता।
हम तारीख़ के आईने में जब इतिहाद को देखते हैं तो आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने और इसके अलावा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जिस तरह के शहीद मुतहरी फरमाते हैं कि
जी
इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इतिहाद के लिए इतिहादी उम्मत के लिए ये लफ्ज़
जी
हैं अल्लामा शहीद मुतहरी के इतिहाद उम्मत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दी। हम देखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने हक़ से जो हैं वो पीछे हट जाते हैं।
जी
सिर्फ इसकी इल्लत ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो उम्मत इख्तलाफात का शिकार ना
ना हो
हो। हम
सके।
उसके बाद देखते हैं कि ये सिलसिला चलते चलते हज़रत इमाम हसन मुजतबा तक पहुँचता है।
जी
हज़रत इमाम हसन मुजतबा भी उम्मत के अंदर सुलों की खातिर उम्मत की इस्लाह की खातिर उम्मत के इतिहाद की खातिर उम्मत के भाईचारे की खातिर उम्मत के अख़ुव्वत की खातिर जो हैं इमाम भी सुलों का इंतखाब करते हैं
जी
ताकि किसी किस्म का कोई खून जो है वो ना बहे लोगों के अंदर इतिहाद बाकी रहे। इसके बाद हम इस सिलसिले को हज़रत इमाम हुसैन में आते हुए देखते हैं।
और आप जैसे हमें बता रहे थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो है सुलह की और
जी
इसे बचाने के लिए, वहीं हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जब हम आते हैं तो उन्होंने खून दे के इस मोहब्बत को बरकरार रखा।
देखें जब ये सिलसिला चलते चलते हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंचता है उस वक़्त इस्लाम की ज़ाहरी सूरत जो है उसको ख़राब किया जा चुका है। इस्लाम अपने हकीकी माना पर कायम नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम को अपने हकीकी असूलों पर कारबंद करने के लिए इत्तेहाद के लिए जो है वो करबला के मैदान में आते हैं
जी
और इस मैदान के अंदर हमें बेहतरीन मुजाहिरा इत्तेहाद का दिखाई देता है। किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ किस्म के मोतियों को परोकर एक खूबसूरत सी तस्बीह 72 की दानों में हमारी आगोश में डाल दी है। हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस वक़्त जो साथी थे वो मुख्तलिफ़ अकायद के थे
जी
जिनके अंदर हमें जॉन भी दिखाई देते हैं और जुहैर इब्ने कैन भी दिखाई देते हैं और फिर जनाब हुर हमें दिखाई देते हैं। इस जगह पर जो हमें मोहब्बत का पैगाम मिलता है अख़ुव्वत का पैगाम मिलता है वो सिर्फ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत में मिलता है। यानी नुक्ताए आतफ़ी और नुक्ताए मोहब्बत जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम में हमें दिखाई देता है वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। इसके बाद ये सिलसिला हज़रत सैयदुस्साजिदीन तक पहुँचा। हज़रत सैयदुस्साजिदीन अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले को इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए सहीफ़े सजादिया का सहारा लिया और इसके बाद इमाम लोगों तक अपनी मुनाजात के ज़रिए से अपने पैगामात पहुंचाते थे ताकि किसी किस्म का इस्लाम को नुकसान ना पहुंच सके। क्योंकि आपस के इख्तलाफ जब पैदा हो जाएं तो बाहर वाले जो लोग होते हैं जो बैरूनी
पैदा हो
कुव्वतें
जाते हैं
होती हैं उनको एक मौका मिल जाता है उस चीज़ का कि वो उनके इत्तेहाद को पारा पारा करके उनका जो इब्तदाई इस्लाम मकसद था, इस्लाम से पहले मकसद था या कबल अज़ इस्लाम मकसद था, उसको अमली जामा पहना सकें। मगर हम देखते हैं आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगियां हमें इत्तेहाद के दर्स पर कारबंद दिखाई देती हैं। हम यहाँ तक देखते हैं इमाम मूसा काजिम उम्मत के इतिहाद की खातिर जो है वो कैद खाने का इंतखाब करते हैं, जेल का इंतखाब करते हैं। इस जगह पर तारीख में रुक के मैंने उस वक़्त के बादशाह से पूछने की कोशिश की कि तुम इमाम को कैद खाने में क्यों डाल रहे हो। तो हमें बादशाह वक्त तारीख में कहते हुए ये दिखाई देता है कि मैं जब तक मार्केट के अंदर एक असली चीज़ हो तो नकली चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि ये लोग भी अपने आप को
जानते
रसूल
थे।
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन बताते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम इमाम सज्जाद से पूछते हैं तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, अब मैं कैद खाने में हूँ, मगर जब इसी बादशाह पर एक मुश्किल वक्त आएगा तो ये मसला पूछने के लिए
मेरे
मुझे
पास
कैद खाने से बाहर लाएगा।
जी
यानी ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी वो इत्तेहाद की अलामतें हैं जो आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में हमें दिखाई देती हैं।
जी
उसका अमली जामा हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम के दौर में हम देख सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि ईद की नमाज पढ़ाएं, आप घर से तशरीफ लेकर जाते हैं, मगर जैसे ही बादशाह वक्त देखता है कि इनकलाब बपा हो जाएगा, वो इमाम को घर वापस बुला लेता है। इमाम इत्तेहाद की खातिर उस जगह से खामोशी से सकूत इख्तियार करते हुए अपने घर में तशरीफ ले आते हैं ताकि उम्मत के अंदर इत्तेहाद बाकी रहे। इसी तरह से हमें बहुत सारी मिसालें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हदीसें, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
जी
मोमिन जो है वो एक जिस्म की मानिंद है।
जी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आपने हमें एक हदीस सुनाई तो मैं चाहूंगी उसे आगे
जी
बढ़ाएं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मोमिन मोमिन का इस तरह से भाई है कि उसे एक जिस्म की मानिंद करा दिया। अगर जिस्म के किसी अज़ा में दर्द महसूस हो तो पूरे
पूरे
बदन
बदन
में
में ऐसा
तकलीफ़ रहती है,
जी
और किसी जगह पर इत्तेहाद और अखुव्वत को जो है इस्लाम की बुनियाद करार दिया। देखें, जब भी हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो
जी
इससे मुराद हमारी ये होती है कि हम इसमें जो हमारे मुश्तरकात हैं हम उनको लेकर चलें और इख्तलाफी बातें जो हैं उनको छोड़ दिया जाए, जुज़ियात को छोड़ दिया
छोड़ दिया
जाए।
जाए।
देखें, हम तमाम के दरमियान तौहीद, नबुवत,
जी
मौत, ये सारी चीज़ें मुश्तरक हैं।
जी
कुरान सबका एक है, किबला सबका एक है, और
जैसे वो
किताब
लिखा है
सबके
कि
लिए एक है। हम सबको चाहिए इन चीज़ों पर इत्तफाक करके एक दूसरे के साथ बैठ के मिलजुल के बाकी मसाइल का, आजकल इल्मी दौर है, हर तरफ इल्म का दौर दौरा है,
जी
प्रचार
बिल्कुल
है। अगर किसी किस्म का इख्तलाफ है उसको आपस में बैठ के दलील के साथ, इस्तेदलाल के साथ
जी
हल किया जा सकता है। और आज हमें सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है जब हम देखते हैं दूसरी तरफ दुश्मन ने जो जिबा बनाया है, दूसरे उन्होंने जो खेमा लगाया है या उन्होंने जो किस्म की छोनी लगाई है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को इत्तेहाद की सूरत में पेश किया।
जी
हम देखते हैं आजकल यूरोपियन यूनियंस हमें नज़र आती हैं,
जी
अमरीकी इत्तेहाद नज़र आता है, जिसके अंदर दुनिया में मुसलमानों को ख़त्म करने की एक पॉलिसी बनाई जा रही है।
और उनको
और
डिवाइड किया
हमें
जा रहा है।
आज कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस के तमाम इख्तलाफात को बुलाकर मुश्तरकात पर हम सब इकट्ठा हो जाएं और आपस में मिल बैठकर एक दूसरे के जो है दुख में, दर्द में और खुशी में शरीक हो
जी
सकें। ये वाही तरीका है। अहमद ताहरीन अलैहिस्सलाम की रविश यही है। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को अक्सर ये कहा करते थे कि अपने भाइयों के जनाजे में शिरकत करो, उनके मरीजों की इयादत करो। यानी ये बहुत बड़े जो दर्स हमें इत्तेहाद पर मिलते हैं। और
जी
दूसरी, अगर हम इसी तरह से आपस में इख्तलाफात का शिकार रहेंगे तो दुश्मन तो पहले से ही इसी इंतज़ार में है कि किसी तरह से इनके दरमियान फूट को मजीद बढ़ाया जाए
और आपस
और
ही में खत्म हो
इनको
जाए।
किसी तरीके से ख़त्म कर दिया
जी
जाए। आज हम देखते हैं कभी हमें दुश्मन जो है वो सीरिया पर हमला करते हुए दिखाई
जी
देता है, तो कभी इराक पर, कभी अफगानिस्तान में, और कभी किसी जगह पर म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद ना होने की वजह से। इमाम खुमैनी का एक मारूफ जुमला है,
जी
चाहिए कि तमाम मुसलमान अकवाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे दरमियान बहुत सारे नुक्ते इश्तराकात हैं, बहुत सारे मुश्तरकात हैं, और
जी
इख्तलाफ बहुत कम है। इख्तलाफात को बुला के इन मुश्तरकात को लेकर आगे चलना। इमाम खुमैनी ने इसी जगह पर अपनी एक खारजा पॉलिसी की तरफ भी इशारा किया था, जिसके अंदर इमाम ये चाहते थे कि दुनिया के अंदर एक ऐसी करेंसी को राइज किया जाए जो मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ उसी सूरत के अंदर कायम हो सकती हैं जब हमारे अंदर इत्तेहाद हमारी सफ़ों के अंदर आ जाएगा और हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी ये नहीं करता कि अपने एतकादात और नज़रियात को छोड़ के दूसरे के एतकादात और नज़रियात को अपना लेता है,
जी
ऐसा कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इख्तलाफ राय पाया जा सकता
जी
है। एक चीज़ आप कहते हैं, हो सकता है मुझे उससे इख्तलाफ हो,
खुद भाई
मगर
भाई
हमें
पाया
ये
जाता है
चाहिए कि
जी
आपस के अंदर इन सारी चीज़ों को बुलाकर मुश्तरकात को लेकर चलना चाहिए, जिसका आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स दिया है।
जी
हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औस व खजरज के दरमियान जो है एक शख्स जमाने जाहिलियत की तरह आकर उनके रजविया शेर पढ़ना शुरू कर देता है, और ओसो खजरस दोबारा से अपनी दुश्मनी को याद करके अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उस जगह पर तशरीफ़ लाते हैं और उनसे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए मुसलमान कौम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जमाने जाहिलियत की तरफ क्यों पलटना चाहते हो? अल्लाह ने तुम्हें एक नेमत अता की है और तुम्हारी हदायत की है और इस्लाम जैसी एक बेहतरीन अतिया और
जी
हदिया तुम्हें दिया है। तुम्हें चाहिए कि इस्लाम के हदिये को लेकर शैतान की इन तमाम कारस्तानियों को भुला देना चाहिए और शैतानी इकदामात को छोड़कर इस्लाम के साए में आ जाना चाहिए। तो तारीख ने इस जगह पर जिक्र किया है कि उसी वक़्त तमाम के तमाम लोगों ने तलवारें अपने हाथों से फेंक
थी
दी और तमाम की आंखों से अश्क जारी हो गए और एक दूसरे को गले मिलना शुरू हो गए।